Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Thank you. Hare Krishna, Krishna
Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. नमो नमः
वृंदाय
तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवर्ते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवर्ते नमो नमः नंद देवी तुलसी महारानी की जय।
So what you want me to play on harmonium?
Any kirtan you can sing.
Oh, I see. He's going to play.
Thank you. Thank you. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Thank you. Yashodanandana Braja Janaram Thank you.
Krishna, Jai Vrindavan, everyone can follow, isn't it?
Yes.
If I chant, so even if it's not there on the screen, it doesn't matter. It's okay, I think.
Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindava. Govinda Gopi Natha
Jaya Jaya Krishna Sakha Bhattu Dvijara. Jaya Jaya Vrinda Vana Vasi Jata Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanya Bhakti Teja Hara Pailo Shri Nanda Govinda Chara Samandala Jaya Jaya Radha Shyam Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Mano Parakiya bhave jaha brajete praja Krishna Dasa Kohe Namasankirta Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindava Govinda Gopi Natha Madana Mohana
Govinda Gopi Natha
Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan
Thank you.
राधा कुंड की गोवर्धन
Hare Krishna. Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Thank you.
श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। इस्कॉन दामोदर देश यात्रा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हरे कृष्णा। सो वी आर गैदर अगेन टू स्पीक अबाउट श्री वृंदावन धाम। वी हैव बीन सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग द व्रज धाम महिमामृत which has been written by Krishnadas Kaviraj Goswami. Very beautiful song, glorifying all the different pastime places of Sri Krishna and Srimati Radharani.
It will suppose be Hindi.
Oh, today Hindi, is it? Okay. Acha, okay. So all of you understand Hindi, isn't it? Except some devotees, so those who don't understand, will some facility be made for translation?
From Hindi to English for one day, yes.
if you cannot understand Hindi, please lift your hand, please.
How many don't understand Hindi? Please raise your hand. Yeah.
That's quite. Do not understand Hindi. Okay, Paramanandji. Can I go to the back? Take them over. You don't understand. How many of you do not understand Hindi? Don't be shy, don't miss out on the lecture. You don't understand Hindi, please go to the back.
बाकी आप सब हिंदी समझते हैं सो लास्ट एंड फाइनल कॉल एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश हिंदी प्लीज शिफ्ट टू द बैक फॉर ट्रांसलेशन Okay, thank you. Hare Krishna. So, हम अभी वृंदावन के बारे में एक सुंदर भजन गा रहे थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों का और विभिन्न तीर्थ स्थलों का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है और जहां कृष्ण हैं जहां पर उनके पार्षद हैं जहां पे उनकी लीला स्थली है वहां पे वृंदावन है तो जब हम इन लीला स्थलों के बारे में पढ़ते हैं और हम सुनते हैं तो मन में इच्छा होती है कि हम भी वहां पे जाएं इच्छा होती है ऐसे लेकिन हम कैसे जाएं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वृंदावन में रेलवे टिकट खरीदकर या एरोप्लेन का टिकट खरीदकर नहीं जा सकते अगर आपको वृंदावन जाना है इन स्थानों में आपको प्रवेश करना है जिनका वर्णन हम भजन में सुन चुके हैं तो हाँ यहां से वृंदावन जाने के लिए तो आपको हवाई जहाज लेकर जाना ही होगा परंतु वास्तविक वृंदावन में अगर आपको प्रवेश करना है तो इसके लिए कई और चीजों की आवश्यकता है संसार का कोई भी गुण वृंदावन में काम नहीं करता है वहां पे कायदा कानून कुछ अलग ही है दुनिया की बातें वृंदावन में नहीं चलती हैं चाहे दुनिया में हम कोई भी क्यों ना हो कितने भी बड़े व्यक्ति हम क्यों ना हो लेकिन वृंदावन वृंदावन है जब लक्ष्मी देवी आना चाहती थी वृंदावन में कृष्ण भगवान के रास लीला को देखकर वो आकर्षित हुई थी तो वो भी प्रवेश करना चाह रही थी वृंदावन धाम में रास लीला में लेकिन जैसे ही वो वहां पर आई तो उनको रोका गया नो एंट्री आप नहीं जा सकती हैं अब लक्ष्मी देवी तो कोई साधारण महिला नहीं है लक्ष्मी देवी तो साक्षात भगवान विष्णु या नारायण कि पत्नी है वो सदैव भगवान के चरणों की सेवा करती हैं भगवान के वक्षस्थल पर वो एक चिन्ह के रूप में उपस्थित रहती हैं चिन्ह का नाम क्या है श्रीवत्स तो लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण कभी भी अलग नहीं हो सकते लेकिन फिर भी जब लक्ष्मी देवी वृंदावन में आई तो उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली ऐसा क्यों कारण ये है कि वृंदावन के रासलीला में केवल गोपियां प्रवेश कर सकती हैं। तो जब लक्ष्मी देवी वहां पर आईं और उनको कहा गया कि आपको भी ब्रज की एक गोपी बनना है, एक गांव की महिला आपको बनना है, तो लक्ष्मी देवी ने सोचा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि लक्ष्मी देवी तो वैकुंठ की महारानी है। अब वैकुंठ की महारानी आकर एक गांव की साधारण स्त्री बने, ये लक्ष्मी देवी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि लक्ष्मी देवी इतनी महान भक्त हैं, आदर्श है हमारे लिए, पूजनीय है, आराध्य हैं, परंतु वृंदावन में प्रवेश करने के लिए जो भाव की आवश्यकता थी वो लक्ष्मी देवी प्राप्त नहीं कर पाई। उनके अंदर जो एक भाव था कि मैं वैकुंठ की महारानी हूं, ये भाव जो है उनको वैकुंठ, इनको वृंदावन में प्रवेश करने में एक बाधक वस्तु बन गया। तो लक्ष्मी देवी जब इस भाव से प्रवेश नहीं कर सकती हैं, तो यहां हम सब जो इस संसार के छोटे छोटे लोग हैं, हमारी बात तो क्या है। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी कुछ ऐसे अभिमान हुआ, कोई घमंड हुआ कि हम कुछ हैं, तो फिर वृंदावन में प्रवेश करना संभव नहीं है। पुरुष और प्रकृति, ये दो शब्द हैं। पुरुष मतलब जो भोक्ता है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई भी भोक्ता नहीं है इस जगत में। और प्रकृति मतलब जो भोग्य है, जिनका भोग किया जाता है। तो ये भौतिक सृष्टि और जीवात्माएं दोनों ही ये भोग्य वस्तुएं हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। उस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब केवल भगवान को आनंद देने के लिए बने हैं। स्वतंत्र रूप से हमें भोग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो ये मान, अभिमान, सम्मान, इन सारी चीजों को त्यागना होगा, तब जाकर हम वृंदावन के लीलाओं में हम प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। शिवजी भी ऐसे चाहते थे, वो भी नहीं पाए प्रवेश करने के लिए अपने पुरुष शरीर में, क्योंकि पुरुष मतलब एक पुरुषत्व की भावना होती थी। लेकिन शिवजी को ये अवसर नहीं मिला। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे थे अपने ध्यान में, अचानक उनको एक ध्वनि सुनने में आई। आई थिंक वी कैन स्विच ऑफ द थिंग, इजंट इट? अदरवाइज इट विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द साउंड वाइब्रेशन। उनको एक बहुत ही सुंदर बांसुरी की ध्वनि सुनने में आई। तो उन्होंने सोचा ये बांसुरी की ध्वनि कहां से आ रही है। तो इसके पीछे पीछे जाते जाते वो पहुंचे कैलाश से, सीधे आए वृंदावन में। और वृंदावन के अंदर जब आए तो रासलीला की स्थली वहां पर थी, वहां प्रवेश करना चाह रहे थे शिवजी, लेकिन फिर उनको रोका गया कि नहीं, आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदा देवी जो भगवान कृष्ण की लीलाओं की व्यवस्था करती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रासलीला में जाना है तो आपको गोपी बनना है। शिव जी ने, अरे मैं गोपी बनूं? तो हाँ, इसके बिना तो आपको कोई अनुमति नहीं है वृंदावन में, रासलीला में। तो क्या करना होगा गोपी बनने के लिए? तो फिर वृंदा देवी ने कहा कि यहाँ पास में एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर, तो वहां जाके स्नान करना, और स्नान करने के बाद गोपी का देह मिल जाएगा। तो फिर शिवजी गए और शिवजी ने वहां मान सरोवर में स्नान किया, और जैसे ही बाहर निकले तो कौन निकला बाहर? शिवजी नहीं निकले, गोपी निकली। शिवजी ही थे लेकिन शिवजी को गोपी का देह मिल गया। और जब वो आए तो भगवान कृष्ण शिव जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे महादेव आइए आइए, गोपीश्वर आइए, और अभी हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, आप यहां पे खड़े होकर रास स्थली की रक्षा कीजिए तो ये आपकी सेवा होगी। जिसका कोई अधिकार नहीं है यहां पर प्रवेश करने के लिए, आप ऐसे लोगों को रोक देंगे, ये आपकी सेवा होगी। तो शिवजी जो हैं, उनकी ये विशेष सेवा है भगवान कृष्ण के सारे तीर्थ स्थानों में। उनको दिक्पाल कहते हैं, मायापुर में हो, वृंदावन में हो, मथुरा में हो, शिवजी अवश्य वहां पर उपस्थित रहते हैं भगवान के धाम की रक्षा करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई अयोग्य व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर पाए, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, जिसके अंदर सही भाव नहीं है, वृंदावन का भाव नहीं है। तो जब श्रीमती राधा रानी ने सुना कृष्ण कह रहे हैं कि ये गोपीश्वर किसी और गोपी से कह रहे हैं, तो राधा रानी को गुस्सा, ये कौन है, किससे बात कर रहे हैं, किसको गोपीश्वर बुला रहे हैं। तो फिर कृष्ण भगवान ने बताया कि ये तो शिवजी हैं महादेव, अभी रास लीला के स्थली की रक्षा करने के लिए गोपी का शरीर धारण किया है। तो फिर राधा रानी शांत हो गई। तो आज भी रास स्थली के बाहर शिवजी गोपीश्वर के रूप में उपस्थित हैं। तो भगवान शिवजी भी गोपी बने बिना वो प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, कोई भी हो, वो जब प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे। और लक्ष्मी देवी ने बहुत कुछ प्रयत्न किया था, प्रयास किया था कई सालों तक। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दमन की लीला की थी तो कालिया प्राय मर चुका था, और उस समय कालिया की जो पत्नियां थी, नाग पत्नी, जिनका वर्णन यहां हम पढ़ते हैं ना, जय जय नाग कन्यागण, तो कालिया की पत्नियां हैं ये, जो कृष्ण की भक्त थी, और वो अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने के लिए श्री कृष्ण के पास हाथ जोड़कर सामने आई और कहने लगी, हम विधवा हो जाएंगे इसलिए हमारे पति की रक्षा कीजिए, लेकिन हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पति को आपकी बहुत बड़ी कृपा मिल गई है। क्या कृपा मिल गई? कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललना च रत्तपो विहाय कामान् सुचिरधृतव्रताः। वो प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे पति ने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे, ऐसे कौन सी तपस्या की होगी जिसकी वजह से उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके चरण कमलों की धूली उनके सर पे लगे। तब अंघ्री रेणु स्पर्श अधिकार है, ये अधिकार हमारे पति को कैसे मिला ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और नाग पत्नियों का भ्रमित होने का कारण ये है कि सांप का शरीर जो है वो ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो बहुत ही ईर्ष्यालु है, जो बहुत ईर्ष्या करता है दूसरे लोगों से। A person who is very envious of others, whose heart is full of envy, becomes a snake in the next life, because a snake by nature is envious. एक सांप का स्वभाव ही होता है कि वो ईर्ष्यालु होता है, बिना कोई वजह किसी को डस देता है। बस आप जा रहे हैं रास्ते में, पीछे से आके डस दिया, कोई कारण नहीं है। तो अगर कालिया ने सांप का शरीर प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि इसने बहुत कुछ पाप किया होगा, बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति हुआ होगा पिछले जन्म में। लेकिन इतना होते हुए उसे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ जो सौभाग्य लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला, जबकि लक्ष्मी देवी ने कई सालों तक सुचिरम, सुचिरम मतलब कई सालों, बहुत पीढ़ियों तक उन्होंने तपस्या किया। सुचिरम दृढ़ व्रता, दृढ़ता से व्रतों का पालन किया, बहुत तपस्या की। किस लिए? विहाय कामान, सारी अन्य इच्छाओं को त्याग कर भगवान कृष्ण के चरण कमलों के रज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन लक्ष्मी देवी को नहीं मिला, तो कालिया को कैसे मिला? इसका मतलब है वृंदावन के कानून अलग हैं। जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा लगती है, बस वही व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश कर सकता है। जब उद्धव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, द्वारका में सबसे महान भक्त माने जाते हैं उद्धव, जब कृष्ण भगवान चाहते थे कि उद्धव को दिखाएं कि वृंदावन का प्रेम कैसा है, तो उन्होंने उद्धव को वृंदावन भेजा। वैसे वृंदावन के निवासी भगवान कृष्ण के विरह में बहुत दुखी थे, और ये द्वारका के निवासियों को भी पता था। और उद्धव ने जब ये कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने कहा उद्धव से कि उद्धव, अभी तुम जाओ वृंदावन और मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्तों को सांत्वना दो, उनको कहो कि मैं शीघ्र ही वृंदावन लौट के आऊंगा, और थोड़े अच्छे उपदेश कर लेना, उनको थोड़ा ज्ञान देना। और फिर उद्धव वहां पर गए। अब कृष्ण भगवान चाहते थे कि उद्धव और अन्य द्वारका वासियों को पता चले कि वृंदावन की विशेषता क्या है, ब्रजवासियों का प्रेम इतना विशेष क्यों है। तो उद्धव वहां चले गए, और जब वो पहुंचे तो सारे ब्रजवासी उद्धव से पूछने लगे श्री कृष्ण के बारे में, और फिर उद्धव उनको उपदेश करने लगे। और फिर गोपियों ने उत्तर दिया, अन्य ब्रजवासियों ने भी, कि उद्धव हमको ये योग और ज्ञान मत सिखलाओ, हमको ये ज्ञान योग अष्टांग योग इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, हमारी समस्या ये है कि जो अन्य योगी होते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं भगवान को याद करने के लिए, और हम ध्यान में बैठते हैं कृष्ण को भूलने के लिए, क्योंकि ये कृष्ण जो है हमको छोड़ के चला गया। यहां आया, कृष्ण ने वायदा किया कि मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा, और कितने दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं ये कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण को प्रेम करने से हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिला है हमको? हमको नहीं चाहिए, कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि हमको छोड़ नहीं रही है, हम जितना कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को भूलने के लिए, कृष्ण इस प्रकार से हमारे ऊपर छा गए हैं कि हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि वृंदावन में जब श्री कृष्ण चले गए थे, तो ब्रजवासियों की दशा क्या हुई थी, कैसे वो उठ रहे थे, बैठ रहे थे, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता था। एक यंत्र की तरह, मशीन की तरह वो अपने अपने कार्य बाहरी रूप से कर रहे थे, अंदर केवल कृष्ण का स्मरण करते थे। जब तरुण गोपियों को देखा, वरिष्ठ गोपियों ने, तो एक बूढ़ी गोपी कहने लगी एक तरुण गोपी के बारे में, अरे इसको क्या हो गया है, इसके ऊपर भूत सवार हो गया लगता है। तो दूसरे गोपी ने उत्तर दिया, भूत नहीं, नंद का भूत सवार हो गया है इसके ऊपर। समझे ना, भूत, भूत मतलब पुत्र, तो भूत सवार नहीं हुआ, नंद का भूत सवार हो गया। तो इसलिए कृष्ण जैसे छा गए थे ब्रजवासियों के मन में, तो उद्धव ने देखा कि यहां कुछ मेरा ज्ञान शास्त्र वगैरह कुछ चलेगा नहीं, यहां पर कुछ काम नहीं करेगा। तो उद्धव बिल्कुल निस्सहाय हो गए कि क्या करना चाहिए, कैसे इनको सांत्वना देना चाहिए। एक ओर तो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण के लिए रोना चाहिए, और ये ब्रजवासी लोग रो रहे हैं कृष्ण के लिए, तो इन्होंने अपने जीवन की संसिद्धि को प्राप्त कर लिया है, तो मैं उनको नहीं रो ऐसे भी कैसे बोल सकता हूं? अभी जब कोई संसार के व्यक्ति के लिए रोता है तो हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, गीता में ऐसे लिखा है कि आत्मा अमर है, ये है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, तो उनको क्या बताएं, क्या फिलॉसफी उनको, दर्शन उनको बता सकते हैं? इस तरह से उद्धव ने समझ लिया कि इनके सामने, ब्रजवासियों के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं एक घास के तिनके के बराबर हूं। इसलिए उद्धव ने यह प्रार्थना की जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। उन्होंने कहा, आसाम अहम चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतौषधीनाम। मैं चाहता हूं कि वृंदावन में मैं एक घास का तिनका बनूं, एक औषधि, एक लता में बनूं, ताकि जब ब्रजवासी गण जो हैं मेरे ऊपर से चलेंगे तो उनके चरण धूल जो है वो मेरे सर पे लग जाएगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उद्धव ने कभी ऐसे प्रार्थना नहीं की कि मैं भी एक गोप बनना चाहता हूं। उन्होंने प्रार्थना की कि ये गोप गोपी बनना मेरे लिए बहुत ऊंची बात है, मैं तो केवल इनके चरणों में एक घास का तिनका बनना चाहता हूं, इनके चरणों की धूली मेरे सर पे लग गया बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक प्रवचन में कहा, अगर आप वृंदावन की लीला को देखते आपको लग रहा है कि मुझे गोपी बनना है, तो प्रभुपाद कहने लगे ये तो मायावाद है, ऐसा नहीं सोचो कि हमको गोपी बनना है वृंदावन में। तो फिर भक्त ने पूछा, फिर क्या हमको सोचना चाहिए, क्या बनना चाहिए वृंदावन में? तो प्रभुपाद जी ने कहा, गोपियों के चरणों की धूली बनने का प्रयास करो, गोपियों के सेवकों के सेवक बनने का प्रयास करो, दासानुदास। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन का भाव है दास होना, दासों का दास होना। जब तक ये भाव हमारे हृदय में उदित नहीं होगा तब तक हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर। लास्ट लाइन क्या है, गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। ये आखिरी लाइन तो शायद सभी ने सुना होगा ना, गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। भर्तु मतलब जो पालक है, मेंटेनर। तो गोपियों के पालक कौन है, कृष्ण। गोपी भर्तु मतलब कृष्ण है, कृष्ण के दासों का दास बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं ना तो सन्यासी हूं, ना वानप्रस्थ, ना गृहस्थ, ना ब्रह्मचारी, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, मैं कौन हूं फिर? मैं कृष्ण के दासों का दास हूं। यह है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत। वो कहते हैं कि मेरा यही एकमात्र उपाधि है, डेजिग्नेशन, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जो वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं उनको केवल ये उपाधि रखनी चाहिए। हरि बोल,
हरे कृष्ण।
तो केवल अगर यही उपाधि हम मन में रखेंगे कि हम वैष्णवों के दासों के दास हैं तो ही हम वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। पर आजकल अगर आप किसी को कहने जाएं कि आपको दासानुदास बनना है तो वो हंसेंगे नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि आजकल कोई दासानुदास नहीं बनना चाहता है, सभी बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं, सब नंबर वन बनना चाहते हैं सभी लोग। दास कहना मतलब ये एक बड़ा अपमान हो जाएगा। एक बार एक भक्त जो है, जब वो भक्त बने थे इस्कॉन में, विदेश में रहने वाले हैं, और कई सालों के बाद उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। आप तो जानते हैं कि जब भक्त लोग पत्र लिखते हैं तो अंत में कहते हैं आपका सेवक, योर सर्वेंट। तो इस भक्त ने भी आदत से मजबूर होकर अपने पिताजी को पत्र लिखते समय भी अंत में लिखा योर सर्वेंट, और फिर अपना नाम लिखा। तो पिताजी का पत्र आया कि मेरा तो जीवन खराब हो गया, तुम ऐसे जाके तुम सर्वेंट दास बनने के लिए गए हो वहां पे, तुम ऐसे अपना जीवन अर्पण कर रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या एक दास बनने के लिए? तो पिताजी को लगा था कि दास बनना मतलब ये एक बहुत बड़े अपमान की बात है, कि अगर वो बॉस बने होते कहीं जगह तो पिताजी बहुत खुश हो गए होते। तो दुनिया का सिस्टम जो है, दुनिया की पद्धति जो है, वो बिल्कुल उल्टी है। आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंचा है वो भौतिक जगत में सबसे नीचा है, और आध्यात्मिक जगत में सबसे जो नीचा है वो भौतिक जगत में सबसे ऊंचा है। तो भगवान के धाम में दासानुदास बनना सबसे ऊंची बात कही जाती है, लेकिन यहां भौतिक जगत में इसको हम निकृष्ट मानते हैं, इसको तुच्छ मानते हैं, निंदनीय मानते हैं। और वहां अगर किसी के मन में ऐसे अभिमान की भावना उत्पन्न हुई तो उसको तो बहुत तुच्छ माना जाता है। और यहां अगर कोई व्यक्ति अभिमान से चले तो उसको बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। इस प्रकार से वृंदावन प्रवेश करने के लिए बहुत कम लोग योग्य होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग नम्र होने के लिए तैयार होते हैं, दासानुदास होने के लिए। ऐसा नहीं है कि वृंदावन प्रवेश करने के लिए हमें कोई ऐसी कोई तपस्या करनी पड़ेगी हिमालय में जाकर, या बहुत बड़ा पंडित होना होगा, नहीं। केवल भक्तों के संग में आकर अगर हमने सीखा कि हमको भक्तों के दासों का दास कैसे बनना है, बस इससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और हमें वृंदावन में प्रवेश करवाएंगे। जब षड गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये सबसे पहले यहाँ पर आए। वैसे उनके पहले भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी भी आए थे, लेकिन षड गोस्वामियों में से ये सबसे वरिष्ठ थे। और इनके बाद जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि अन्य गोस्वामी भी सब आए। और हालांकि ये अन्य गोस्वामी भी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ये बहुत ही साधारण सेवा करते थे, जैसे आश्रम को साफ करना, झाड़ू लगाना, रसोई करना, छोटी छोटी चीजें वो करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और हमें कोई ऐसे विशेष कार्य करना चाहिए जो हमारे विद्वत्ता के अनुकूल है, अनुसार है। एक बार ऐसे हुआ कि जब जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के आश्रम में सेवा कर रहे थे तो वहां पे एक बड़े बहुत बड़े विद्वान आए जिनका नाम था रूप नारायण। ये रूप नारायण ये भक्त नहीं थे, केवल व्याकरण आदि इन चीजों के विद्वान थे, और अपनी विद्वत्ता के कारण उनको इतना घमंड हो गया था कि वो जहां भी जाते थे वो अन्य विद्वानों को एक प्रतियोगिता में, स्पर्धा में बुलाते थे और वाद करके उनको हरा डालते और उनके विजय पात्र के ऊपर उनका दस्तखत लेते और उनसे कहते अगर आप अभी हार गए हैं मेरे साथ तो आप इस पत्र में दस्तखत कीजिए, साइन कीजिए। और उसमें ऐसे लिखा जाता कि मैंने रूप नारायण से वाद किया और मैं पूरी तरह से हार गया, और रूप नारायण ही श्रेष्ठ विद्वान हैं, इनका सामना करने लायक कोई नहीं है। तो ऐसे सभी लोग दस्तखत कर देते क्योंकि रूप नारायण थे इतने बड़े विद्वान। तो उन्होंने सोचा कि मैंने सुना है कि वृंदावन में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, एक वृंदावन ही बच गया। अगर वृंदावन के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया और वहां जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको हरा दिया तो बस फिर मैं तो दिग्विजयी हो जाऊंगा। तो फिर वो वृंदावन में आए। अब अभक्तों को क्या मालूम वृंदावन में क्या कायदा होता है। तो पहले तो रूप और सनातन गोस्वामी के पास आए, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आइए हमारे साथ आप वाद विवाद की स्पर्धा में भाग लीजिए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को समय बर्बाद नहीं करना था, ऐसे नहीं कि उनको कुछ करने के लिए था नहीं, वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें कर रहे थे, भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग के प्रचार में लगे हुए थे, ग्रंथों को लिख रहे थे, उनको कुछ समय नहीं था ऐसे फिजूल गंवाने के लिए। तो तुरंत उन्होंने कहा, अरे रूप नारायण जी, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो वाद करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो अभी ही आपके विजय पत्र में दस्तखत कर देते। तो उन्होंने साइन कर दिया दोनों ने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, कि हम रूप नारायण के सामने पूरी तरह से हार गए हैं, रूप नारायण ही सबसे बड़ा विद्वान है सारे पृथ्वी के ऊपर। तो रूप नारायण बड़े खुश हो गए, लेकिन जाते जाते उनको याद आया कि हाँ, मैंने सुना है कि इनका एक भतीजा है जो बहुत ही बड़ा विद्वान है, अपकमिंग स्कॉलर, उनका नाम है जीव गोस्वामी। अब जाते जाते जीव गोस्वामी को भी हरा के जाऊंगा तो फिर मेरा दिग्विजयी का पद जो है फिर वो सदैव रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। तो फिर जीव गोस्वामी यमुनाथ के तट पे थे, तो रूप नारायण ने जाके जीव गोस्वामी से कहा, आपका नाम जीव है जीव गोस्वामी? हाँ बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा नाम रूप नारायण है, मेरे साथ बात करोगे? देखो तुम्हारे चाचा लोगों ने मेरे साथ, वो हार गए हैं, विजय पत्र पे उन्होंने दस्तखत किया है। तो जीव गोस्वामी ने देखा, अरे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने साइन किया है, दस्तखत किया है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो जान बूझ के इन्होंने ऐसे किया होगा, क्योंकि उनको समय बर्बाद नहीं करना था, उनको पता चला कि क्यों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने ऐसे किया था। तो जीव गोस्वामी ने सोचा कि ये रूप नारायण का घमंड बहुत बढ़ गया है, अच्छा सबक सिखाना चाहिए इसको। और दूसरी बात, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के मान को रखना चाहिए, नहीं तो ये रूप नारायण सब जगह जाके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की बदनामी करेगा। तो फिर कहा, ठीक है मैं आपके साथ प्रतियोगिता में भाग लूंगा, चलिए बात करेंगे। और फिर यमुना के तट पर 7 दिन वहां वाद हुआ दोनों के बीच में, और फिर रूप नारायण को जीव गोस्वामी ने पूरी तरह से हरा दिया। और रूप जो रूप नारायण है वो फिर अपना सर नीचे करके वहां से चले गए, हार गए। और फिर जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर रूप गोस्वामी के पास आए कि ऐसे जो रूप नारायण है, जो आपसे इन्होंने विजय पत्र के ऊपर दस्तखत करा लिया था, मैंने उसको हरा दिया, अब उसको वापस भेज दिया, अभी आपका अपमान नहीं होगा। जब रूप गोस्वामी ने यह सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया, तुमने केवल अपने मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए ऐसे रूप नारायण जैसे एक ज्ञानी अभक्त के साथ वाद किया, 7 दिन अपने बर्बाद किए तुमने केवल इस दुनिया में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के लिए, ताकि लोग कहेंगे कि जीव गोस्वामी इतना बड़ा विद्वान है कि उसने रूप नारायण जैसे विद्वान को भी हरा दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो इतने मान अभिमान के पीछे है, उसको वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, बाहर जाओ, तो वृंदावन से बाहर जाओ। जीव गोस्वामी सोचने लगे, अरे कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी तो उनके गुरु तुल्य थे। लेकिन जीव गोस्वामी ने उत्तर नहीं दिया, नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, मैंने आपके लिए किया। जो नम्र व्यक्ति होते हैं उल्टा जवाब नहीं देते हैं। तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ मेरे गुरु जो कह रहे हैं ये सही है, वास्तव में मेरे अंदर बहुत घमंड है, अहंकार है। सत्य तो ये है कि जीव गोस्वामी ने घमंड के कारण ऐसे नहीं किया था, लेकिन वो इतने नम्र थे कि रूप गोस्वामी की बात को पूरी तरह से उन्होंने मान लिया। और फिर रूप गोस्वामी ने जब उनको वृंदावन के बाहर भेजा तो वो मथुरा की ओर चले गए। कई दिन ऐसे बीत गए। एक दिन रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनके पास आए और कहने लगे कि अरे रूप, मैं समझता हूं कि तुमने महाप्रभु के एक उपदेश को अच्छी तरह से समझा नहीं है। अब देखिए रूप गोस्वामी भी इतने बड़े विद्वान थे वास्तव में, अगर चाहते तो वो कह सकते अरे ये कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मुझे तो सब मालूम है। अगर हमें ऐसे कुछ कोई कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम तो उत्तर देंगे। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा अच्छा बताइए तो सही कि मुझे क्या नहीं, मैंने क्या नहीं समझा हूं महाप्रभु की शिक्षाओं से। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि कहो तो सही महाप्रभु की उपदेश कौन से हैं। फिर एक के बाद एक रूप गोस्वामी कहने लगे। फिर आए नाम रुचि, नाम रुचि के बाद आए जीव दया। जीव दया मतलब जीवों के ऊपर दया करना, लेकिन इसमें डबल मीनिंग था, डबल अर्थ था जो सनातन गोस्वामी कहलाना चाहते थे, कहना चाहते थे रूप गोस्वामी से। फिर रूप गोस्वामी समझ गए कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्हें जीव गोस्वामी के ऊपर दया करना चाहिए। फिर तुरंत उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलवा लिया। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो इस भौतिक जगत में, हम कितने भी बड़े भक्त भी क्यों न हो, लेकिन वृंदावन में अगर जाना है तो हमें पूरी तरह से नम्र हुए बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। बाहरी वृंदावन में भले हमें प्रवेश मिले, लेकिन असली वृंदावन में हमें कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। जीव गोस्वामी के साथ एक और ही लीला इसी प्रकार की हुई। एक बार वल्लभ भट्ट वहां पर आए। तो वल्लभ भट्ट ये भी एक बड़े वैष्णव संत थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, और रूप गोस्वामी उनको वरिष्ठ समझकर उनको बहुत सम्मान देते थे। तो जब वल्लभ भट्ट वहां पर आए तो उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा कि आप अब कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं इस समय भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूं। तो एक मर्यादा की बात है, रूप गोस्वामी ने सोचा कि वल्लभ भट्ट हमसे वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं। तो तुरंत उन्होंने अपना ग्रंथ वल्लभ भट्ट को दिया और कहा कि इसमें अगर कोई गलती हो तो कृपया आप इसको सुधार कर मुझे लौटा दीजिए। तो वल्लभ भट्ट ने उस ग्रंथ को देखा।